मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 30 दिसंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करना चाहूंगा अपने उन 5 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 7 से 21 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान दोस्तों के नाम हैं शिव कुमार कुशवाहा उन्नाव उत्तर प्रदेश से, राजेंद्र सिंह मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, रिया भारद्वाज चामुंडा धनौरा उत्तर प्रदेश से, अहमद मुंतकीम पचपोखरा उत्तर प्रदेश से और नितेश राजपूत अतरौली उत्तर प्रदेश से। फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैंने आप सबसे कहा था, सूचना दी थी कि अभी जो क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं इसमें ₹2000 का डिस्काउंट दिया जा रहा है और इस डिस्काउंट के लिए अब बहुत ही कम दिन बच गए हैं और इनफैक्ट कल डिस्काउंट का अंतिम दिन है। मुझे लगा कि एक बार मुझे फिर से आप सबको स्मरण करा देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं रजिस्ट्रेशन करा लूंगा, बाद में भूल गए, क्योंकि टालने की हमारी सबकी एक अपनी अंतर्निहित आदत होती है। हो सकता है कि कल मैंने ये सूचना दी थी तो आप उसे ना सुन पाए हो, उस दिन का आपने ऑडियो ही ना सुना हो, इसलिए मैं आज फिर से आप सबको स्मरण दिला रहा हूं कि क्लासेस के रजिस्ट्रेशन के लिए जो ₹2000 का डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है कल उसकी आखिरी डेट है। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक वाहन आप कह लीजिए, इलेक्ट्रिक कार, इसके बारे में कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। रेडियो न्यूज में आपने एक शब्द सुना होगा, गावी। पता नहीं आप सबने कितना उस पर ध्यान दिया, गावी। इंग्लिश का शब्द है ये, GAVI। न्यूज में यह कहा गया कि जो हमारे मंत्री हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, आप जानते हैं, नाम याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको उनका नाम मालूम है। इस तरह से अपने को बीच बीच में टेस्ट भी करते रहना चाहिए, क्या आपको उनका नाम मालूम है। लगातार अखबारों में उनका नाम आ रहा है, शायद आप सोच लेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्हें ये जो गावी ऑर्गेनाइजेशन है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बोर्ड का मेंबर बनाया गया है और वो 2021 से लेकर के 2023 तक इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब आप देखिए, संगठन का नाम आ गया गावी, न्यूज में बात आ गई, खत्म हो गई। अखबारों में शायद ही आपको ये पढ़ने को मिले, किसी अखबार ने ले लिया हो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक ठीक है, वो मेंबर बने हैं बोर्ड के मेंबर, तो अखबार के लिए वो सामान्य सी ही बात है। अगर सामान्य सी बात नहीं भी है तो आप यूं कह लीजिए कि जिनके लिए अखबार छपता है उनके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। लेकिन चूंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिर यहां थोड़ा सा रुक करके जानना चाहिए कि ये गावी क्या है। दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि मैंने बताया, इसका फुल फॉर्म, इसकी जो स्पेलिंग है वो है GAVI। जी स्टैंड फॉर ग्लोबल, ग्लोबल यानी कि वैश्विक, अलायंस, ए का है अलायंस, अलायंस का मतलब है कि संगठन, कुछ लोग मिलकर के एक तरीके से इसको कुछ लोगों ने मिलकर बनाया है, अलायंस फॉर, किसके लिए, वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, वी स्टैंड फॉर वैक्सीन और आई स्टैंड फॉर इम्यूनाइजेशन, यानी कि इसका फुल फॉर्म हो गया द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। यानी कि यह वैश्विक स्तर का एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी पहल है जो टीकाकरण, टीका और टीकाकरण के लिए काम करेगा, वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के लिए काम करेगा। अब आप देखिए कि 2020 का वर्ष रहा है, यह पूरी तरह से आप यूं कह लीजिए कि लगभग कोरोना की भेंट चढ़ गया और कोशिश होती रही है दुनिया के स्तर पर कि कैसे इसके लिए वैक्सीन डेवलप किया जा सके, वैक्सीन डेवलप किया जा सके। अब वैक्सीन डेवलप हो जाने के बाद अब यह कोशिश हो रही है कि कैसे टीकाकरण, अब लोगों तक कैसे इसकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, आप देख रहे हैं। तो ऐसे समय में गावी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन अभी ही नहीं बना है, कि जो कोरोना के कारण बना है, नहीं, ये सन 2000 में बन चुका है। सन 2000 में ये बन चुका है, और खासकर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर काम करता है, मतलब इसमें सरकार भी है संगठन में और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वे भी हैं, और इनका जो नारा है वो है इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, यानी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका टीकाकरण किया जाए, और स्पेशली ये जो काम करती है जो गरीब राष्ट्र हैं वहां टीकाकरण के लिए इसके विशेष प्रोग्राम चलते रहते हैं। स्विट्जरलैंड का जो जिनेवा है दोस्तों वहां इसका मुख्यालय है। तो ये गावी के बारे में थोड़ी सी बातें थी, आपको नोट कर लेनी चाहिए क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में इस तरह से कुछ पूछ लिया जाता है। न्यूज में ही आपने सुना होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये जो ऐसा मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जिसकी बहुत कम चर्चा होती है, बहुत ही कम चर्चा होती है, शायद ही आपको कभी पढ़ने को सुनने को मिलता हो। इसीलिए अगर मैं पूछूं कि इसके मंत्री कौन है तो आप शायद नहीं बता सकेंगे, और अगर नहीं बता सक रहे हैं तो इसमें कुछ अपराध बोध की बात नहीं है, अपेक्षा भी मैं नहीं कहता, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत कम चर्चा होती है, लेकिन चूंकि न्यूज में ये बात आई थी तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है इसके जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन ही हैं, और कल उन्होंने लेह में एक मौसम केंद्र का उद्घाटन किया है लेह, और ये हमारे देश के सबसे ऊंचे क्षेत्र में स्थित मौसम केंद्र है। कभी कभी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों आज के अखबारों में और दो तीन दिन से अखबारों में ये घटना आ रही है, लेकिन हमारे लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं थी, तो हमारे लिए का मतलब है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, तो इसकी मैंने चर्चा नहीं की थी। इकोनॉमिक टाइम्स ने आज इस पर एक एडिटोरियल कमेंट लिखा है, और वो ये है कि आपको मालूम है कि सन 2016 में जनमत कराया गया था ब्रिटेन में, और तब ये फैसला किया गया कि जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा, उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब जो घटना है वो ये कि ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के जो शेष राष्ट्र हैं उनके बीच में समझौता हो गया, व्यापार वगैरह का समझौता हो गया है। ये एक बहुत अच्छी बात हुई है कि दोनों, यानी कि यूरोपियन यूनियन एक देश हो गया समझ लीजिए आप, हालांकि वो संगठन है, और ब्रिटेन इनके बीच में व्यापार संबंधी समझौता हो गया है। अब भारत को अपनी स्थिति देखनी है। देखिए उनके बीच में क्या समझौता हुआ है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि अब भारत को क्या करना चाहिए, क्योंकि अब भारत के लिए ब्रिटेन बिल्कुल एक अलग राष्ट्र हो गया और यूरोपियन यूनियन बिल्कुल अलग राष्ट्र हो गया। तो भारत को चाहिए कि अब वह अपनी संभावनाओं को, व्यापार की संभावनाओं को और दूसरे रिलेशनशिप को, चाहे वो डिप्लोमेटिक ही क्यों ना हो, अलग अलग करके देखे और कोशिश करे कि कैसे वो इन सब के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बहुत तेजी के साथ डिमांड होती चली जा रही है। फ्रेंड्स आज मैं आपको फिर इकोनॉमिक टाइम्स का ही एक एडिटोरियल कमेंट है मेट्रो को लेकर, मेट्रो सर्विसेज को लेकर के ये प्रोवाइड कर रहा हूं। मेट्रो सर्विसेज, हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि सन 2025 तक हमारे 25 शहरों में मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बनाने में क्या बाधाएं आ रही हैं, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, स्पेशली मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से। और मैं जो इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल कमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें ये बातें दी हुई हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। और स्पेशली इसमें उन्होंने जो सवाल उठाया है वह है लैंड एक्विजिशन का, कि आपको मेट्रो का रास्ता निकालना है, या जो हमारे कॉरिडोर भी बन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इस तरह से बहुत से कॉरिडोर बन रहे हैं। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो लैंड एक्विजिशन की, भूमि अधिग्रहण को लेकर, तो थोड़ा सा आप इसे देख लेंगे तो मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड टॉपिक जो है ना आपका अपडेट हो जाएगा। फ्रेंड्स एक पर्यावरण पर एक बहुत अच्छे अभियान की खबर आज मुझे एक अखबार में पढ़ने को मिली है, और ये अभियान केरल सरकार ने शुरू किया है, और केरल सरकार को शुरू किए हुए लगभग 2 साल हो गए हैं। ये आप यूं कह लीजिए कि एक अद्भुत किस्म की ब्याज मुक्त, जिस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, लोन या ऋण देने की योजना है। और देखिए इसकी खूबसूरती क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसान हैं, आप अपनी जमीन पर पेड़ लगाइए, पेड़ आप कौन से लगाएंगे इसकी पहचान एक गांव, केरल सरकार, केरल में ही एक गांव जिला है वायनाड, है ना, वहां की पंचायत में ये शुरू की गई, वहां की एक पंचायत है मीनागढ़ी पंचायत, वहां ये योजना शुरू की गई है। तो एक किसान अपनी जमीन पर पेड़ लगाए कौन से पेड़ लगाएगा, जैसे आम है, कटहल है, देवदार है, 34 तरह के पेड़ों की पहचान की गई है कि आप ये पेड़ लगाइए और एक पेड़ के ऊपर आपको 50 रुपए हर साल लोन मिलेगा हर साल, और ये 10 साल तक मिलता रहेगा। यानी एक पेड़ पर आप एक साल में आप यूं कह लीजिए कि आपके 500 रुपए मिल गए एक पेड़ पर, और इस तरीके से आप जितने पेड़ लगाएंगे आपको लोन मिलता चला जाएगा और इस लोन पर कोई भी ब्याज नहीं दे होगा, ब्याज नहीं देंगे। जब आप इन पेड़ों को काटेंगे तब फिर आपको केवल मूलधन देना होगा, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही देना होगा, आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी योजना है। तो खासकर वृक्ष बढ़ाओ वृक्ष लगाओ के तहत एक, मुझे लगता है कि चूंकि एक अनूठी योजना है तो आपकी जानकारी में होना चाहिए, हो सकता है कि आप कहीं इसका इस्तेमाल कर सके। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, वह है इलेक्ट्रिक कार को लेकर। इस पर ज्यादा बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं बचा है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस विषय पर बिजनेस स्टैंडर्ड ने आज एक एडिटोरियल कमेंट लिखा है, और ये एडिटोरियल कमेंट चूंकि हिंदी में है और बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, इसलिए यदि मैं बात नहीं भी कर पा रहा हूं तो आपको कोई इससे नुकसान नहीं होने जा रहा है। फिलहाल मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इसी एडिटोरियल कमेंट को बेस बनाकर आपको एक छोटा सा नोट तैयार कर लेना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रिक कार हैं ये किस तरीके से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, नंबर वन। और अगर हमारे यहां इलेक्ट्रिक कारों की शुरुआत होती, हालांकि शुरुआत होती हमारे जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी ने, उन्होंने कहा है कि 2021 की छमाही तक एक कंपनी है टेस्ला, अमेरिका की कंपनी है, वो उसकी इलेक्ट्रिक कार भारत में आ जाएगी, बाद में इलेक्ट्रिक कार भारत में ही बनने लगेगी। और आपको मालूम है कि चूंकि हमने पेरिस सम्मेलन में घोषणा की है, पेरिस सम्मेलन में शामिल होते हुए, कि हम अपने यहां कार्बन उत्सर्जन को बहुत कम करेंगे, तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में आप यूं कह लीजिए कि कारों की बहुत बड़ी भूमिका है। अभी आपने देखा कि कोविड के दौरान कैसे जब शहरों में यातायात बंद हो गया था तो शहरों का पर्यावरण कितना बेहतर हो गया था, तो इलेक्ट्रिक कार ये काम कर सकती है। और भारत सरकार ने अपनी नीति के तहत इसकी घोषणा भी की है कि बहुत जल्दी हम इलेक्ट्रिक कार करेंगे और देश भर में 70,000 चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। तो ये कैसे संभव हो सकता है, इस क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं, इसको लेकर के ये बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट लिखा गया है। समझाने की कोई बात इसमें नहीं है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली मेन एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए। तो मैं चाहूंगा कि आप सब अपनी ओर से बहुत ही छोटा सा आपको नोट बनाना है, मतलब मुश्किल से एक पेज का, और केवल पॉइंट पॉइंट्स आप लिख लीजिए, दैट्स ऑल, आपका काम हो जाएगा। फ्रेंड्स मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, वह आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, विधान चंद्र सिन्हा, यश जैन, ममता निषाद और अमृता पटेल, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।